تو مسیح میں بلائے ہوئے پیارے بھائی اور بہن, ہم پہنچ گئے ہیں ہماری کلاس نمبر 24 تری دیو کی پڑھائی کا بھاگ 2, جس میں آج ہم پڑھیں گے پرمیشور کے پتر پربھو یشو مسیح کے بارے میں. تو آج ہم دوسرے بھاگ کی پڑھائی میں, تری دیو کے دوسرے بھاگ کی پڑھائی میں, جو پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا اس کو تھوڑا پہلے ریوائز کریں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا کہ ٹرینیٹی کے پہلے بھاگ میں, کہ جو یہ جو مسیحی شکشا آج جو پھیلی ہوئی ہے تری دیو کے بارے میں, بائبل اس کی سپورٹ نہیں کر رہی ہے, پوتر شاستر اس کے بارے میں نہیں بول رہا ہے. کوئی تری دیو نہیں ہے, دو ہے, باپ اور بیٹا, پوتر آتما پرمیشور کی شکتی ہے. اور یہ جو آج پھیلی ہوئی ہے یہ ہے غلط شکشا, اور اس کو پولس نے بولا ہے بھوتوں کی شکشا. کیونکہ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ گمراہ کرنا. شیطان کا مقصد کیا ہے؟ ستیہ کو دبانا. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں پولس نے ہمیں پہلے ہی ساودھان کر دیا تھا. جیسے باقی شکشا آتما نہیں مرتی ہے اور نرک ایک ستائے جلائے جانے والی استھتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ایسی شکشا ہے مسیحیوں میں جو پھیلی ہوئی ہے, جس کا آدھار بائبل میں نہیں ہے. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھ لیا, اور یہ بھی سیکھ لیا کہ پوتر آتما تو پرمیشور کی شکتی ہے, نہ کہ کوئی انسان. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھا کہ جب پربھو یشو مسیح 14:15-16 چیپٹر میں اس کو سہائک کا نام دے رہے ہیں, تو وہ ایک چترانتک روپ میں, درشتانتک روپ میں سہائک کا نام دے رہے ہیں. کیونکہ پرمیشور کا آتما ہمیں تسلی دیتا ہے, ہمیں جب ہم دکھ پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہماری سہایتا کرتا ہے. تو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھ لیا تھا تین نہیں کتنے ہیں, دو ہیں. تو آج ہم پڑھائی کریں گے بیٹے کے بارے میں دوسرے بھاگ میں, اور شروع کریں گے وہی وچن جو ہم نے چھوڑا تھا پچھلی کلاس کے اینڈ میں, یوحنا 10 اور 30.
میں اور پتا ایک ہیں.
میں اور پتا
ایک
ہیں. تو پربھو یشو مسیح کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ ہم ایک ہی انسان ہے یا ایک ہی ہے, اور کیا پربھو یشو مسیح ہی پتا اور پتا ہی پربھو یشو مسیح ہے؟ کیا پربھو یشو مسیح خود پتا پرمیشور ہے؟ اور جیسے آج کل ہم بولتے بھی ہیں پربھو یشو مسیح ہمارے پتا. ٹھیک ہے, کیا یہ ستیہ ہے؟ ایک اور وچن پڑھتے ہیں, یوحنا 14:7-11.
यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो, उसे देखा भी है. फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यदि हमारे लिए बहुत है. यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, اور کیا تو مجھے نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا ہے؟ اس نے پتا کو دیکھا ہے. تو کیوں کہتا ہے کہ پتا کو ہمیں دیکھا ہے؟
آگے بھی پڑھ لو, 11-11.
کیا تو وشواس نہیں کرتا کہ میں پتا میں ہوں
اور پتا مجھ میں ہے؟ تو یہ وچن کی تصویر دکھا رہا ہے کہ شاید ایک ہی انسان ہے, پربھو یشو مسیح ہی پتا ہے اور پتا ہی پربھو یشو مسیح ہے. تو کیا یہ ایسا ہے؟ کیا یہ نچوڑ ہے؟ ہم یہ بات یہاں پہ چھوڑ دیں؟ نہیں, پربھو یشو مسیح ہی پتا پرمیشور ہے. تو آگے اسی ادھیائے میں 28 وچن میں ایک اور چیز پڑھو ابھی ذرا, 28 اسی کا 14:28.
تم نے سنا کہ میں تم سے کہا, میں جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آؤں گا, یعنی تم مجھ سے پیار رکھتے तो इस बात से आनंदित होती कि मैं पिता के पास जाता हूँ क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है।
पिता मुझसे
बड़ा है,
कितने लोग हो गए अभी?
दो हो गए, फिर तो अलग।
पिता बड़ा है और मैं ये वचन बोल रहा है दो बार दो बंदों के बारे में, और प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं पिता से क्या हूँ, कम हूँ। अब इस बात को हम कैसे समझें, कैसे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं और मेरा पिता एक हूँ, और उसके बाद बोल रहे हैं कि पिता मुझसे बड़ा है, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग, बड़ा क्या बोलते हैं, असमंजस में डालने वाली बातें। तो और थोड़े वचन प्रभु यीशु मसीह के देखते हैं, क्योंकि हमें ये बात अभी साफ करनी है। एक तरफ बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पिता मुझसे बड़ा है, और प्रभु यीशु मसीह इस एकता के बारे में सफाई देते हैं, बताते हैं कि ये एकता का क्या मतलब है। यूहन्ना 17 का 21 और 22,
कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम मैं हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि
हम
एक हैं।
हम यानी हम क्या होता है,
हम
एक हैं, हम दोनों एक हैं। ऐसे ही ये 144,000 जो मेरी कलीसिया है, जब ये आए तो ये भी हम में आके क्या हो जाए,
एक
हो जाए। लेकिन ये एकता की बात हो रही है, ये एक बंदे की बात नहीं हो रही है, क्योंकि कितने 144,000 कलीसिया है। अभी ये प्रभु यीशु मसीह में जाके एक कैसे हो जाएगी, क्या प्रभु यीशु मसीह के अंदर घुस जाएंगे जाके सब, है ना? तो ये एकता जो है, प्रभु यीशु मसीह एकता की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए ये जो त्रिदेव की शिक्षा है, अगर ये कलीसिया एक हो जाए, चलो आज तक तो हम मानते थे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है, लेकिन जब कलीसिया मिलकर जाके तो ये तो ट्रिनिटी की जगह मल्टीप्लिसिटी बन जाएगा, कितने बन जाएंगे, फिर तो ट्रिनिटी नहीं रहेगी ना। तो ये एकता जो है, ये इच्छा की एकता है, ये मकसद की एकता है, ये स्वभाव की एकता है, ये परमेश्वर की योजना को पूरा करने की एकता है। मत्ती 7:21 में पढ़ लो ये बात, एकता की, इच्छा की एकता के बारे में।
जो मुझसे है हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा।
जो मुझमें मुझे हे प्रभु कहता है, हर कोई राज्य में दाखिल
नहीं
होगा आगे,
परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता
की इच्छा को पूरा, जैसे मैं मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता हूँ, वही जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करेगा वही होगा स्वर्ग का, वो स्वर्गीय उदारता का भागीदार। तो ये एकता, तो उत्पत्ति 2:24 में पढ़ लो, 2:24 उत्पत्ति 2:24।
इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे।
अभी एक शरीर बन जाएंगे बोलता है, हस्बैंड वाइफ क्या बन जाएंगे, लेकिन आप एक शरीर हो, या मैं और मेरी पत्नी एक शरीर है,
नहीं
ना, लेकिन एक ये क्या है, ये है इच्छा के तौर पे एक, मकसद के तौर पे, ठीक है,
एक
हम एक फैमिली हो गए, अब हमारा मकसद एक है, हमारी इच्छाएं एक हैं, हम सोचते हैं मेरे घर का भला हो। तो ऐसे ही पिता और पुत्र में एकता है, और यही एकता किसकी हो जाएगी बाद में, कलीसिया की, जब कलीसिया पूरी हो जाएगी। तो अगर हम ये माने कि वो एक तन हो जाते हैं, तो क्या बस या प्लेन या कहीं जाएं तो हम पति पत्नी तो हम एक ही टिकट लेंगे, या थिएटर जाए तो एक ही टिकट लेंगे या एक कुर्सी पे बैठेंगे?
तो अगर अगर एक मानते तो फिर हमें एक ही टिकट लेना। हाँ, तो फिर हमें सरकार को भी मानना चाहिए बात,
करेक्ट
बात को, भी एक ही टिकट दें।
हाँ, तो इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह का मतलब मैं और मेरा पिता एक हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं ही पिता हूँ और पिता ही मैं हूँ। और बाद में हम पढ़ रहे हैं 14:28 में, साफ साफ प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, पिता मेरे से क्या है,
बड़ा
है और मैं छोटा हूँ। योहन्ना 13:16 में भी ये बात पढ़ लो, इन दोनों का रिश्ता क्या है, पिता का और पुत्र का।
योहन्ना 13:16।
तो ये बात हमने समझ ली है कि पिता और पुत्र अलग अलग हैं, ठीक है, एक ही नहीं है।
पिता पिता है, बेटा बेटा,
बेटा है। हाँ, अभी 13:16 इनका रिश्ता देखो।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं,
दास
अपने स्वामी से बड़ा नहीं,
अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। आगे,
और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से।
देख लो,
उन्होंने क्लियर अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता।
मैंने मुझे भेजने वाला कौन है और मैं कभी उससे बड़ा नहीं। ये खुद प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को भेजने वाला कौन था, परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह उसका क्या था, दास। ये पढ़ लो, यशाया 53:11।
इकलौता पुत्र बोला
है ना। हाँ, वो भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बताता हूँ मैं। यशाया 53:11।
वे अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा।
नहीं नहीं,
सही है सही है सही है।
13:53
अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास,
मेरा धर्मी दास। ये 53वां चैप्टर ना जो है, 52 और 53, ये खास करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, ठीक है। धर्मी दास। प्रभु यीशु मसीह को क्या नाम दिया है, धर्मी दास। और फिर पढ़ लो 52:13, इसी का ही 52:13।
देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा।
देखो, तो ये दास प्रभु यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर का दास, और पिता परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह का मास्टर, प्रभु यीशु मसीह से बड़ा। और यूहन्ना 8:42 में ये साफ साफ पढ़ लो,
यूहन्ना 8:42।
यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है।
ये बात नोट कर लो। हम बोलते हैं ना, आप अगर नॉर्मल बात करो ना क्रिश्चियन से, प्रभु यीशु मसीह तो बोलता है मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ, तो पता क्या बोले, प्रभु यीशु मसीह खुद आया है, प्रभु यीशु मसीह ने सिंहासन छोड़ा, इंसान का रूप धारण किया और धरती पे आया। ये क्या बोल रहा है, मैं खुद से नहीं आया हूँ, मुझे भेजा गया है और भेजने वाला कोई है,
पिता।
मुझे भेजने वाला कोई है जो मुझसे बड़ा है। तो परमेश्वर ने अपने अपने मैसेंजर को भेजा, अपने दूत को भेजा, और वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 12:49 पढ़ लो, जैसे मैसेंजर होता है ना, मैसेंजर एक देश का मैसेंजर, इंडिया का मैसेंजर जाए प्राइम मिनिस्टर का मैसेज देके, वो अपने से कुछ नहीं बोलेगा। हाँ जी,
तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति,
नहीं, 12:49
क्योंकि मैंने
यूहन्ना ना,
क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ।
देखो, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोला है, जो कुछ मुझे ऑर्डर देके भेजा गया, हुक्म दिया कि ये बोलना है, मैं वही बोलता हूँ। मुझे भेजने वाला कौन है? पिता परमेश्वर है। मुझे ये वचन, ये शब्द बोलने का हुक्म हुआ है और मैं वही बोलता हूँ। तो ये सब वचन जो हम देख रहे हैं, इनमें देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि पिता के अधीन है प्रभु यीशु मसीह, और पिता प्रभु यीशु मसीह से बड़ा है और प्रभु यीशु मसीह पिता से छोटे हैं। चलो, ये तो अब हमने देख लिया। अभी हमने देखना है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच है क्या, ठीक है, और इनका रिश्ता क्या है। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:14 में बोलते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:14,
लौकदिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है।
परमेश्वर की सृष्टि का मूल यानी शुरुआत, शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ये अपने शब्दों से बोल रहे हैं कि परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत कौन है? मैं। यानी समझे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे पहली जो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना शुरू की तो वो है मुझसे। मैं था सबसे पहले बनाया गया, ये धरती, ये बाकी सब कुछ बाद में, सबसे पहले कौन? पिता परमेश्वर ने किसको रचा? यही बोल रहा है वो, मैं हूं शुरुआत। किसकी? परमेश्वर की सृष्टि की। इंग्लिश में है, पढ़ लो, इंग्लिश में क्या है? बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड
एंड टू द एंगल
एंजल एंजल ऑफ द चर्च
एंजल ऑफ द चर्च इन
चर्च ऑफ द लाउडेशियन
राइट द वर्ड ऑफ द आमीन द फेथफुल
एंड ट्रू विटनेस
विटनेस
वफादार और सच्ची गवाही
द
बिगिनिंग ऑफ गॉड बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड। बिगिनिंग मतलब शुरुआत, क्रिएशन ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत, मैं हूं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों में बता रहे हैं कि वो परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत है। तो क्या परमेश्वर ने उसको बनाया फिर? क्या परमेश्वर ने उसको बनाया? एक और बात पढ़ लो, एक और वचन पढ़ लो, कलूसिया 1:15।
तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है।
सारी सृष्टि में
पहलौठा है।
पहलौठे का मतलब समझते हैं? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत है। परमेश्वर ने जिस को सबसे पहले बनाया वो है प्रभु यीशु मसीह। आदम के बनाने से पहले, दूतों के बनाने से पहले, चेरुबिम बनाने से पहले, सेरफिम बनाने से पहले, स्वर्गीय कोई भी चीज बनाने से पहले, सबसे पहले किसको बनाया? यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को पता क्या बोला जाता है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र। योहन्ना 3:16 और 1:18। तो एक और बात, ये वचन पढ़ने से पहले एक और बात बताऊं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जिसको परमेश्वर ने बनाया है, बाकी को परमेश्वर ने नहीं बनाया है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पता क्या बोलते हैं? मैं हूं शुरुआत और मैं हूं अंत, मैं हूं अल्फा और मैं हूं ओमेगा। इसका मतलब पता क्या है? परमेश्वर ने जब सृष्टि की शुरुआत की तो अपने हाथों से मुझे ही बनाया, मैं ही पहला हूं और मैं ही अंतिम, और किसी को परमेश्वर ने नहीं बनाया। वो देखेंगे किसने बनाया फिर आगे। तो ये वचन पढ़ लो पहले, योहन्ना 3:16,
क्योंकि उसकी
नहीं 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 316 परमेश्वर ने जगत को
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया।
एक पुत्र और इकलौते पुत्र में बहुत फर्क होता है। इकलौता मतलब एक ही, और एक का 18 भी पढ़ लो, एक का 18 ये बात है। एक और पढ़ लो ध्यान से ब्रदर, 1:18 में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, पढ़ लो।
परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा,
देखो अंडरलाइन कर लो ये बात, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ठीक है। सिर्फ किसने देखा? सिर्फ उसके इकलौता पुत्र, ऐसा बोला ना, इकलौते पुत्र,
इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है,
हाँ,
उसी ने उससे प्रकट किया।
तो ये है प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता पिता के साथ, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। इसका क्या मतलब है? क्या दूत आदम परमेश्वर के पुत्र नहीं है? और प्रभु यीशु मसीह को इकलौता पुत्र क्यों बोला? क्योंकि वचन में दूतों को भी पुत्र बोला गया है, पढ़ लो उत्पत्ति 6:2, और आदम को भी पुत्र बोला है,
6:2,
हाँ,
तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा।
देखो परमेश्वर के और भी पुत्र हैं, यानी दूत, ये दूतों के बारे में बात हो रही है। और लूका 3:38 में देख लो, आदम को भी परमेश्वर ने अपना पुत्र बोला है।
नहीं, ये उत्पत्ति किसने का?
6:2 3:38
और वे एनोश का और वे शेष का और वे आदम का और वे परमेश्वर का पुत्र था।
तो आदम को भी परमेश्वर का पुत्र बोला, सही ना? तो ये अन्याय की बात नहीं है कि परमेश्वर उनको पुत्र बोल रहा है और फिर उसके बावजूद बोल रहा है मेरा एक ही पुत्र है, इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रहस्य और प्रभु यीशु मसीह की महिमा की चाबी छुपी हुई है। वो क्या है वो हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे कि क्या है प्रभु यीशु मसीह और बाकियों में अंतर। ये भी परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। अभी यहाँ पे कोई गलत बात नहीं है, कुछ भी नहीं गलत है, ठीक है। अभी प्रभु यीशु मसीह को इकलौता क्यों बोला है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो अभी हम देखेंगे। नीति वचन 8:22-24 देखो, और ब्रदर आप देख लो प्रकाशित वाक्य 22:13, आप नीति वचन 8:22-24 देख लो और प्रकाशित वाक्य 22:13 पढ़ो।
पढ़ो,
हाँ पढ़ो, आप पढ़ लो।
मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ।
पहला और अंतिम,
कितना
8:22-24 तक।
यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया।
देखो प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को उत्पन्न किया जा रहा है, कौन कर रहा है? परमेश्वर। हाँ,
मैं सदा से वरना आदि से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई थी। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के टूटे थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई।
देखो जब कुछ भी वो प्रभु यीशु मसीह के लिए ये चिनात्मक रूप में, एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की बुद्धि बोला गया है। बुद्धि को, बुद्धि जो रूपांतरण हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हुआ, तो विजडम है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम विजडम, यानी बुद्धि, ज्ञान, तो इसलिए उसको हुई बोला, ठीक है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले परमेश्वर जिसको उत्पन्न कर रहा है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही है वो सृष्टि जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, खुद बनाया। और उसके बाद परमेश्वर ना तो किसी सृष्टि को बनाएगा और ना ही बनाया है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही बनाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत। परमेश्वर ने जिसको बनाया वो मैं हूं, मेरे से ही शुरुआत हुई और मेरे पे ही परमेश्वर ने सृष्टि का एंड कर दिया। अभी आगे आगे क्या हुआ, आगे देख लो प्रभु यीशु मसीह की महिमा क्या है। इतना ही नहीं, यूहन्ना 1:3 पढ़ लो।
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई।
तो जो कुछ आगे बनाया गया ना, फिर वो किसके द्वारा बनाया गया? ठीक है, आगे पढ़ लो, ये शायद लिखा है आगे, और पूरा पूरा पढ़ो। जो कुछ भी बनाया उसके द्वारा और उसके लिए भी बनाया। ये पढ़ लो, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था।
नहीं नहीं, 1:3 द्वारा से पढ़ो।
अच्छा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ।
उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हाँ,
उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई।
तो आदम को बनाने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को किसने बनाया? परमेश्वर ने। ठीक है, परमेश्वर ने उसके बाद किसी को नहीं बनाया। बाकी जो कुछ भी, चाहे पेड़ पौधे लगाओ, चाहे जानवर लगाओ, चाहे तारे लगाओ, चाहे सूर्य लगाओ, सब सब किसके द्वारा बनाया? प्रभु यीशु। ये है प्रभु यीशु मसीह की महिमा। इसलिए उसने बोला मेरा इकलौता पुत्र। इकलौता इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ही उसने सृष्टि की शुरुआत उसी से की और उसी से एंड कर दी। बाकी जो कुछ आगे बना वो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से बना। और ये बात साफ साफ पढ़ लो, नीति वचन 8:30, प्रभु यीशु मसीह क्या था परमेश्वर की साइड पे? आठ का तीस हाँ।
तब मैं कारीगर के पास थी।
हाँ।
और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी।
मैं कारीगर।
हाँ।
कारीगर समझते, कारीगर मैं मिस्त्री की तरह काम करता था और पिता परमेश्वर बैठता था। पिता परमेश्वर देखते थे, पिता परमेश्वर ही बताते थे ऐसा करो, लेकिन करता कौन था? प्रभु यीशु मसीह। ये है प्रभु यीशु मसीह की महिमा। सब कुछ बनाया, ब्रह्मांड धरती सब किसके जरिए से? प्रभु यीशु मसीह के जरिए से। प्रभु यीशु मसीह की, पिता परमेश्वर की जो वो कुछ सृष्टि उत्पन्न करने वाली शक्ति को इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हिस्सेदारी दी इस दुनिया को बनाने की। उसको वो महिमा दी कि तुम सबकी रचना करो। ये बड़ी खास महिमा है प्रभु यीशु मसीह की। इब्रानिया 1:5 में भी पढ़ो।
क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है?
कौन से स्वर्गदूत को बोला उसने तू मेरा पुत्र है? हाँ,
आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा
और वो मेरा
पुत्र होगा।
तो बोला किस स्वर्गदूत को बोला कि मैंने तुम्हें उत्पन्न किया? सिर्फ यीशु मसीह को उत्पन्न किया किसने? और किसी, कोई स्वर्गदूत ये बोल भी नहीं सकता कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, क्योंकि स्वर्गदूतों को भी किसने बनाया है? यीशु मसीह ने बनाया है। तो बोलता कौन दूत इतनी हिम्मत रख सकता है कि वो बोले कि मुझे तो पिता परमेश्वर ने बनाया है। देख लो, तो ये है महिमा प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को नाम पता क्या मिला? इकलौता पुत्र। अब समझते हो इकलौते पुत्र का क्या मतलब है? इकलौता पुत्र जिसको खुद परमेश्वर ने बनाया। देखो डायरेक्टली परमेश्वर ने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को बनाया, इनडायरेक्टली बाकी सारी, इनडायरेक्टली किसके जरिए से? प्रभु यीशु मसीह के जरिए से बाकी सारी सृष्टि की क्या की? रचना की। तो ये एंजल्स जो स्वर्गदूत हैं वो भी ये नहीं बोल सकते कि हमें परमेश्वर ने डायरेक्टली बनाया।
तो इसका मतलब परमेश्वर ने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को संबोधित किया, तो और भी कोई पुत्र है परमेश्वर का? कोई नहीं है ना।
नहीं देखो इकलौता पुत्र
वो तो इनडायरेक्टली है सब बारह।
हाँ हाँ हाँ, आदम या स्वर्गदूत ये उसके पुत्र पुत्र नहीं है। हम भी सब उसके परिवार से, क्योंकि उसके हमने पढ़ा है ना कि धरती पे कोई भी घराना हो उसका नाम पिता परमेश्वर से, उसको उनका बुजुर्ग वही है। ठीक है, तो लेकिन डायरेक्टली नहीं,
लेकिन है तो उसी खून से उसी घराने से। हाँ हाँ हाँ
हाँ, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे सिद्धांत का दादा है, ठीक है, अभी उसके दादे का वो पुत्र ही हो गया ना, तो उसके परमेश्वर के इकलौते पुत्र की आगे जो संतान है वो उसकी भी तो क्या हो गई? संतान ही होगी ना, तो वंश हो गया ना उसका। एक और महिमा पढ़ लेते हैं, कुलोसिया 1:16। अभी बनाया तो उसके जरिए से, लेकिन किसके लिए बनाया ये भी देख लो।
एक का सोलह
हाँ।
निकालिए, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सिंहासन क्या प्रभुताएं क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के
लिए
सृजी गई।
सब कुछ उसी के द्वारा, और पिता ने किसके लिए किया? कि बेटा मेरी जायदाद तो तेरी है ना, तू ही करेगा सब कुछ, राज तेरा ही है सब कुछ।
1:16
जी, 1:16
देख लो,
देख लो कितनी बड़ी सोच है, पिता का कितना बड़ा प्लान है अपने इकलौते पुत्र के लिए, क्या सोच है ये जरा सोच के देख लो, कितनी महिमा है परमेश्वर के इकलौते पुत्र की, बहुत बड़ी महिमा है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं हम क्या, यूहन्ना 1:14
और वचन देनारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौती की महिमा,
और वो पूरी तरह कृपा और सच्चाई से। तो शब्द क्या हुआ? देहधारी। शब्द देहधारी हुआ, यानी अभी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के 3 जन्म हो रहे हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के 3 जन्म हुए हैं, मरे सिर्फ एक बार ही है, लेकिन जन्म 3 हुए हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। सबसे पहला जन्म कब? स्वर्ग में, जब परमेश्वर ने
बनाया
उनको, बनाया सृष्टि की शुरुआत की भी, ठीक है, उत्पन्न किया। अभी वो प्रभु यीशु मसीह अमर नहीं था, जो वो सृष्टि बनी थी वो अमर नहीं थी। अभी वहां पे बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि वो उनकी मृत्यु हुई, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में लिया और मारा और फिर मरियम की कोख में आया, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर की शक्ति थी कि वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में परमेश्वर की मौजूदगी में था, अपनी शक्ति के जरिए से बीज बना के मरियम की कोख में डाल दिया। ये था प्रभु यीशु मसीह का दूसरा जन्म। कितना जन्म? वो कैसा? इंसान का, मनुष्य का, ठीक है। तो पहला जन्म जब परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, उसको बनाया, उत्पन्न करना बनाया, जन्म देना, सही ना। उसके बाद दूसरा जन्म मरियम की कोख से। उसके बाद तीसरा जन्म कब हुआ? जब तीसरे दिन जी उठे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के स्वभाव में अब कौन सा अमरता का जीवन, बिना मृत्यु वाला जीवन। और वो जीवन जो पिता खुद में रखता है वो किसको दे दिया? पुत्र को दे दिया। ये पढ़ लो प्रकाशित वाक्य 1:18।
मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है।
मर गया था। परमेश्वर कभी मर नहीं सकता। मर सकता है परमेश्वर? तो उसका इकलौता पुत्र मरा। वो इकलौता पुत्र जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था मृत्यु का स्वाद चखने के लिए, लेकिन बोलता है अब देख मैं युगायुग जीवता हूँ। इब्रानिया 1:6।
और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब सरदूत उसे दंडवत करें।
देखो तो प्रभु यीशु मसीह के 3 जन्म हुए हैं और 1 ही मृत्यु हुई है।
एक बार पिता परमेश्वर ने, फिर एक बार वो सेकंड बार
मरियम के शारीरिक रूप में।
और
ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे एक और बात समझाऊं आपको, ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने बोला यीशु मसीह तुम्हारा ये काम है, तुम वो काम पूरा करके आओ, मैं तुम्हें बहुत बड़ी मेहमान दूंगा। ऐसा कुछ नहीं था।
और 3 जन्म में सिर्फ एक ही बार मरे।
हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। परमेश्वर ने ये बोल के भेजा ये तुम्हारा काम है, अभी वहां पे जाके मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा लेकिन काम तुम्हें ही करना है, और ये जो स्वर्गीय महिमा है ये अब तुम्हें छोड़नी होगी। तो मतलब वो जो स्वर्गीय सृष्टि थी उसका एंड हुआ, वो नहीं थी उधर। ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह यहां भी था और स्वर्ग में भी था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा तो कोई भी कर सकता है। मैं आपको बोलूं ब्रदर जेपी शर्मा, ये मैं आपको ऑफर देता हूं, आप करके आओ और आप बहुत बड़ी महिमा, तो आप भी कर दोगे, इसमें क्या है? फिर वहां वफादारी साबित करने का क्या मकसद बनता है? बात तो वो करो जब आपको पता नहीं आपके लिए क्या होने वाला है और फिर पता चले वाह क्या बात है, जब वो मेहमा मिले। ठीक है, तो इसीलिए शब्द बोलते देहधारी हुआ और हमारे बीच में। शब्द का मतलब समझते हैं? शब्द
परमेश्वर का।
हाँ, अभी अभी आपको इसका और गहरा मतलब समझाता हूँ। पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि कोई राजा वगैरह होता था ना, राजा ऐसे पर्दे में रहता था और वो सीधा प्रजा को कुछ नहीं बोलता था, किसी को कुछ नहीं बोलता था। वो पता है उसके बाजू में एक दूत, स्वर्गदूत होता था। स्वर्गदूत नहीं, उसके दूत बोलते, राजदूत जिसे बोलते
हैं। आजकल बोलते नहीं
तो ऐसे उस समय क्या होता था, ऐसे बोलना, जो भी मैंने बोलना मैं अपने दूत को बोलूंगा, ये बोलो तुम, वो बोलो। तो परमेश्वर का वो शब्द है। शब्द मतलब अभी ही वाला शब्द नहीं, शब्द मतलब जो कुछ भी परमेश्वर ने संदेशा देना वो किसके द्वारा देगा? पुत्र के द्वारा देगा, डायरेक्टली बात नहीं करेगा, किसके द्वारा बोलेगा? यीशु मसीह के। ये है शब्द का मतलब। और वो शब्द जो परमेश्वर का, परमेश्वर के संग रहता था, उसको खत्म होना पड़ा और क्या बनना पड़ा? इंसान। और देखो जरा सोचो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की होगी परमेश्वर ने, स्वर्गीय सृष्टि को एक बीज बनाया, बीज मरियम की कोख में डाल दिया। क्या बड़ी सोच है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिसके बारे में आज हम नहीं बात करेंगे। तो ये महान सच्चाई जानने के बाद कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के अधीन है, पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, पिता परमेश्वर से छोड़ते हैं, तो और वचन पढ़ लेते। पहला कुरिन्थियों 11:3-23।
पहला कुरिन्थियों
जब उन्होंने जन्म ले लिया तो उससे पहले काम किए थे यीशु मसीह,
हाँ, जब स्वर्ग में थे, आदम वगैरह बना दिए ये वो, उसके बाद जब इकलौते पुत्र को भेजना था बचाने के लिए, तब मरियम से जन्म किया। हाँ, काम तो पहले किया था,
आदम वगैरह बना दिए स्वर्ग में,
तो और क्या, आदम की वाटिका में बनाने वाला कौन था, परमेश्वर थोड़ी स्वर्ग छोड़ के आएंगे, यीशु मसीह से उधर बना रहे।
पहला कौन थी,
11 का 3।
परंतु मैं चाहता हूँ कि
डरता हूँ,
चाहता हूँ,
पहला कौन सी है ना,
11 का 3।
परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है।
पुरुष का सर कौन है,
मसीह।
हाँ,
और स्त्री का सिर पुरुष है,
पुरुष है,
और मसीह का सिर परमेश्वर।
मसीह का हेड कौन है, ये देख लो, औरत, औरत का हेड कौन, मर्द, मर्द का हेड कौन, यीशु, यीशु का हेड कौन,
परमेश्वर।
देख लो वचन आपके सामने है, उत्पत्ति, सॉरी, इसी का 3:23, पहला कुरिन्थियों 3:23।
और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है।
तो परमेश्वर का कौन है, मसीह। तो ये सब हमें बातें दिखा रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह का हेड कौन है, पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के अंडर है, पिता परमेश्वर के अधीन है। लेकिन कुछ ऐसे वचन हैं जिनको आज दिखाया जाता है कि वो दिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है। तो चलो अब उनको समझने की कोशिश करेंगे, वो वचनों के अर्थ। सबसे पहला वचन यूहन्ना 8:56-58 तक, आठ का 56-58 तक।
तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा अब तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ।
मैं हूँ
अब्राहम से पहले।
तो प्रभु यीशु मसीह को फरीसी बोलते हैं, तुम तो 50 साल के भी नहीं हुए और तुम बोले मैंने अब्राहम को देखा। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं कि यहूदी उससे, प्रभु यीशु मसीह से ये प्रश्न करते हैं, तुम अभी 50 साल के भी नहीं हुए, 50 साल के भी नहीं हुए, ठीक है, और बोल रहे हो कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, सॉरी अब्राहम को देखा, ये कैसे हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह उत्तर पता क्या रहते, जब अब्राहम पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब मैं हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह फरीसियों, जो अविश्वासी फरीसियों को ये बात बता रहे थे कि मैं स्वर्ग से हूँ। अरे अब्राहम, क्या अब्राहम जिसकी पीढ़ी है आदम, उसको बनाने वाला मैं हूँ, और जब आदम पैदा भी नहीं हुआ था उससे भी पहले मैं हूँ, ये धरती जब थी भी नहीं उससे भी पहले मैं हूँ, क्योंकि मैं तो पहली हूँ परमेश्वर की सृष्टि। और कई लोग बोलते नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ, तो आई एम इंग्लिश में है आई एम, तो प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है। लेकिन पिता परमेश्वर ने जो अपना नाम बताया था, आई एम व्हाट आई एम, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ आई एम, उसने ये नहीं बोला आई एम व्हाट आई एम, व्हाट आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, वो है ना परमेश्वर का नाम, मैं जो हूँ सो हूँ। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ, ऐसा नहीं बोला मैं हूँ।
परमेश्वर का नाम नहीं होगा, परमेश्वर बोलते हैं।
बताएगा मैं बताऊंगा मैं अभी अभी पता परमेश्वर पे जाना है अभी हमने ना। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि मैं इब्राहिम से भी
पहले से
हूँ, मैं बहुत पहले से हूँ, अभी वो इस बात को नहीं समझ रहे। ठीक है, यूहन्ना 6:57 में पढ़ लो।
जैसा जीते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा।
मैं पिता के कारण क्या हूँ? क्योंकि बोलते हैं मेरा जीवन पिता के जीवन पर निर्भर है, मैं उसके कारण क्या हूँ?
जीवित
हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं कि उनका जीवन पिता पे निर्भर करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में ये नहीं बोला कि मैं ही पिता परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं इब्राहिम से भी पहले हूँ। तो इसका मतलब क्या, हम जान चुके हैं
मुझे खाएगा का मतलब शब्दार्थ चिन्हात्मक पद है ना, मुझे ग्रहण करेगा।
हाँ हाँ हाँ।
खाएगा का मतलब ग्रहण करेगा ना,
वचन है ना,
वो वचन है, वो शब्द है, परमेश्वर का वचन है,
चिन्हात्मक पद है।
तो ये जो वचन है ये प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी के बारे में बता रहा है कि उनकी मौजूदगी इब्राहिम जब पैदा भी नहीं होता उससे कहीं पहले से है, जो कि हम देख चुके हैं क्योंकि वो क्या है, परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत
है,
और उसके बाद ही आया जो कुछ
अगर वो शुरुआत है तो फिर बाकी सब तो बात नहीं है।
हाँ, तो इसीलिए
प्रभु,
हाँ तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को ये बता रहे थे कि मैं स्वर्ग से हूँ, मैं इन सबसे पहले हूँ, मैंने उनको देखा हुआ, मैंने उनको जानता हूँ, इब्राहिम वगैरह। तो एक और वचन जिसे साबित करने के लिए बोला जाता है वही यूहन्ना के पहला वचन, पहला और दूसरा वचन पढ़ लो,
एक का
यूहन्ना 1:1।
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था,
आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था
और वचन परमेश्वर था
और शब्द भी परमेश्वर था।
आदि मतलब शुरू में ना।
हाँ, तो ये वचन लेके आपको ये बोला जाता है, देखो ये वचन कौन है आपसे पूछा जाएगा, आप बोलोगे यीशु मसीह, तो बोलो एंड में देख लो, बोले यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं ही परमेश्वर हूं। आदि में परमेश्वर था,
आदि में
शब्द था
और वचन परमेश्वर के साथ था,
शब्द परमेश्वर के संग था,
मतलब बेटा जो यीशु मसीह परमेश्वर के साथ।
हाँ,
और वचन परमेश्वर था,
वचन परमेश्वर था। तो ये बात जब आती है ना तो लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है और आपको ये वचन दिखा देंगे, आपको जब ये वचन दिखा देंगे आप बोलोगे वाह यार ये तो बात सही है, प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है। तो
और,
चलो
दो बार बोला हुआ है यही आदि में परमेश्वर के साथ था।
हाँ, तो यहां तक तो ठीक है, अगर इतना होता आदि में शब्द था, बिल्कुल सही है, शुरुआत में शब्द था और शब्द परमेश्वर के संग था, यहां तक क्लैरिटी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एंड की जो लाइन जुड़ गई ना, शब्द परमेश्वर था, वहां पे लोग जाके कंफ्यूज हो जाते हैं।
वचन परमेश्वर था,
शब्द परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था, वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही खुद पिता परमेश्वर है। तो अभी चलो इसको पढ़ते हैं, इसको तीन भाग में हम वचन को बांटेंगे इसको समझने के लिए। इस वचन को आदि में शब्द था, आदि में शब्द था पहला भाग, शब्द परमेश्वर के संग था दूसरा भाग, और तीसरी चीज क्या, शब्द परमेश्वर था। तो ये बीच वाला बात तो हमें बिल्कुल समझ आ गई है कि पहले कौन था, पिता और पुत्र था, शब्द परमेश्वर के संग था, यानी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे। ठीक है, शुरुआत में, और शुरुआत में शब्द था। शुरुआत में शब्द का मतलब क्या है, भजन संहिता 90:2 में पढ़ लो।
भजन संहिता कितना, 9 का
90:2
इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरना अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है।
तो आदि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है, इसका मतलब क्या है? पिता परमेश्वर की ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है और अंत है। तो ये है अंतर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो शब्द हैं बता रहे हैं कि मेरी शुरुआत है, आदि में शब्द था, यानी मैं शुरुआत में शुरू, मैं हूं परमेश्वर की शुरुआत। जैसे हमने अभी पढ़े जो जो वचन कि अल्फा और ओमेगा और शुरुआत और अंत में हूं, लेकिन परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। परमेश्वर युगा युग से चले आ रहे
हैं,
बस मतलब
कोई एंड नहीं,
वो ही परमेश्वर है, ना एंड है और ना ही शुरुआत है। हाँ, और परमेश्वर कभी मर नहीं सकते, परमेश्वर मर नहीं सकते, अंत नहीं होगा परमेश्वर का।
उसके बाद यीशु मसीह को भी मिल गया वही चीज।
हाँ, तो यीशु मसीह की मृत्यु हुई। देखो, परमेश्वर नहीं मर सकते, परमेश्वर को मरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर नहीं है, ये बात यहाँ तक साबित होती है। लेकिन शब्द परमेश्वर था। यहाँ पे आके जो है घूमने लगती है इसकी, ये बात हजम नहीं हुई। हाजमोला सर, चलो हाजमोला देंगे अभी। तो ये बात को समझने के लिए क्या प्रभु यीशु मसीह की पिता परमेश्वर है, पढ़ते हैं एक और वचन, इब्रानियां 1:8। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कैसे बुलवाते हैं ये देखो।
इब्रानियां 1:8,
अभी ये परमेश्वर बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर,
परमेश्वर उसको बोलता है पुत्र को, हे परमेश्वर,
तेरा सिंहासन युगायुग रहेगा,
तेरा सिंहासन युगायुग रहेगा,
तेरा राज राजदंड का राजदंड है।
हाँ, तो ये पिता परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं, हे परमेश्वर। परमेश्वर पिता जो है, जो प्रभु यीशु मसीह से बड़े हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं, हे परमेश्वर। अभी क्या आगे क्या बोलते हैं, फिर 9 में पढ़ लो, आगे भी पढ़ लो।
तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा,
आगे
इस कारण परमेश्वर,
इस कारण हे परमेश्वर, तेरे परमेश्वर को ये बात अच्छी लगी है,
तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया।
तो परमेश्वर क्या बोलते, हे परमेश्वर, तेरे परमेश्वर, यानी हे पुत्र, तेरा पिता जो तेरा परमेश्वर है, उसको ये अच्छी चीज लगी है कि तुझे सारी बातियों से क्या करे, अभिषेक करे। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर खुद परमेश्वर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, खुद परमेश्वर बुलाते हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह की जुबानी सुन लो, यूहन्ना 20:17।
यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ।
खुद प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरा परमेश्वर कोई है ऊपर, मेरा पिता है,
तुम्हारा
भी वही है परमेश्वर। देख लो, ये साफ साफ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उनका पिता, उनका परमेश्वर है स्वर्ग में, और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बड़े भाई होंगे। पिता हमारा, पिता परमेश्वर है।
कलीसिया भी उन्हीं से, हम जब हाँ, हम बच्चे हुए,
पढ़ लो
हमारे बड़े बेटा,
पढ़ लो इब्रानियां 2:11।
इब्रानियां 2:11
क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं डराता।
देखो भाई भाई है, भाई हमारा बड़ा भाई, जब राज जब न्याय का समय आएगा, जब 1000 साल में वो कलीसिया के साथ राज्य करेगा, तो प्रभु यीशु मसीह सब कलीसिया का बड़ा भाई हो जाएगा, सारे संसार का बड़ा भाई हो जाएगा। मत्ती 25:40 में भी पढ़ लो, मत्ती 25:40, प्रभु यीशु मसीह ने ये कभी नहीं चाहा कि वो अपने पिता का स्थान ले। कोई वफादार पुत्र ये चाहेगा कि वो अपने पिता की महिमा ले ले?
मत्ती 25:40
जी।
तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वे मेरे साथ किया।
तो इन छोटे से छोटे मेरी कलीसिया के जो मेंबर हैं वो मेरे भाई हैं, तो जो उसके साथ करोगे वो मेरे साथ करोगे। तो चलो ये बात भी समझ आ गई। एक और दूसरी बात जो परमेश्वर की बात बोलो, परमेश्वर शैतान को भी गॉड बोलता है, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। परमेश्वर शैतान को भी गॉड बोलता है और मूसा को भी बोला तू इनका गॉड है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पिता परमेश्वर की जगह ले लेंगे, शैतान या मूसा। तो अगर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर बोला है, वर्ड वॉज गॉड यानी शब्द परमेश्वर था, इसका मतलब क्या है? मैंने बताया था ना, एक तो माइटी गॉड, एक है ऑलमाइटी गॉड। माइटी गॉड प्रभु यीशु मसीह, ऑलमाइटी गॉड पिता परमेश्वर, ठीक है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। तो ये बात, ये बात पढ़ लो, यशाया 9:6 जो गलत समझी जाती है।
क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता और उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा।
इंग्लिश में पढ़ो इसको जरा, इंग्लिश में।
फॉर टू अस ए चाइल्ड इज बोर्न, टू अस ए सन इज गिवन, एंड द गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God.
क्या?
Mighty God.
Mighty God. Mighty God का मतलब शक्तिमान परमेश्वर और अनंत काल का पिता,
Everlasting
Father. Father, Everlasting Father. तो ये वचन लेके क्या बोला जाता है कि ये देखो यशाया भी वही बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है, ये वचन दिखा के आपको बोला जाएगा। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं ध्यान से, सबसे पहले इसको क्या बोला, यहाँ पे जो शक्तिमान परमेश्वर और अनंत काल का पिता बोला गया है, तो वो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, सबसे पहले बोला माइटी गॉड, माइटी गॉड मीन शक्तिमान परमेश्वर। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो पिता परमेश्वर की बात नहीं हो रही है, प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है, ये साफ साफ हमें पता चल रहा है, ठीक है। अफेसियों 1:17 पढ़ेंगे जरा वचन में, एक
अफेसियों 1:17 हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तो मैं अपनी पहचान में ज्ञान
प्रकाश,
ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दी।
तो फर्क है, एक ऑलमाइटी गॉड है, एक माइटी गॉड है। माइटी गॉड कौन है? पुत्र। ऑलमाइटी गॉड कौन है?
पिता
परमेश्वर, ठीक है। तो ये वचन से प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, ठीक है, ये बात साफ साफ, जो महिमा का क्या है? पिता है, महिमा का
पिता,
बाप है, ठीक है। तो ये जो बात हो रही है माइटी गॉड, ये परमेश्वर के बारे में बात नहीं हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। परमेश्वर है ऑल माइटी गॉड, और शैतान को भी गॉड बोला है। 2 कुरिन्थियों 4:4 में पढ़ लो, हिंदी में ईश्वर होगा लेकिन इंग्लिश में आपको पता चल जाएगा गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। 4:4
और दूसरा कुर्सी। अच्छा, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मनुष्य जो परमेश्वर के प्रतिरूप है उसके तेजस्मय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके।
देखो तो इस संसार का ईश्वर, यहाँ ईश्वर शब्द दिया है लेकिन इंग्लिश में गॉड है, पढ़ लो चार का चार। हाँ, इंग्लिश में गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड बोला है।
इन देयर केयर द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड।
हाँ, कौन? द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड
ब्लाइंडेड
द आई, अंधा कर दिया है
द माइंड ऑफ द।
तो बस बस, तो क्या शैतान को भी परमेश्वर क्या बोलता है? गॉड। और मूसा को भी यही बोला, निर्गमन 7 का 1 में पढ़ लो।
निर्गमन 7 का 1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर का ठहराता हूँ। ये तो क्लियर है।
तो इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर बोलते हैं, गॉड, माइटी गॉड।
लेकिन वो
ऑल माइटी गॉड
नहीं, परमेश्वर का बोला है ना,
परमेश्वर का
ठहराता हूँ।
हाँ, लेकिन इंग्लिश में है, आई हैव मेड दी अ गॉड अन टू फैरो।
And the Lord said to Moses, I have made you like
God. Made thee a God, like नहीं है, made thee a God unto, like लिखा है?
You like
नहीं है, लेकिन आप उसमें पढ़ो।
Aaron and the daughter
Aaron. निर्गमन ये है तुम्हारा 7 का एक है ना?
हाँ, Exodus.
एक सो दी लॉर्ड साइड टू मोसेस, See, I have made you a God.
I have made you.
Made you a God to
Pharaoh.
And
Aaron.
Made you as God. Made you as God to Pharaoh. As we तरह परमेश्वर जैसा, लेकिन केजेवी में साफ साफ है, आई हैव मेड दी ए गॉड अनटू फैरो। मतलब मैं तुम्हें परमेश्वर, फैरो के लिए परमेश्वर ठहराता हूँ। तो चलो, परमेश्वर तो मूसा को भी गॉड बोल रहे हैं, शैतान को भी गॉड बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझे कि वो परमेश्वर के बराबर हो गए? इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर बोला गया है, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। परमेश्वर खुद इब्रानियों में बोल रहे हैं, हे परमेश्वर, तेरे परमेश्वर को ये बात अच्छी लगी है। सही ना? तो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर नहीं है, ये बात हम साबित नहीं इससे कर सकते। ठीक है, इतने वचन हम पढ़ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के ही जुबानी, जो पिता परमेश्वर को अपने ऊपर बता रहे हैं। लेकिन एक जगह प्रभु यीशु मसीह को ऑलमाइटी भी बोला है, माइटी नहीं, ऑलमाइटी बोल दिया। प्रकाशित वाक्य 1:8 पढ़ लो।
ये क्यों?
बताता हूँ मैं।
1:8 प्रभु परमेश्वर जो है और सो है और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ।
यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान बोल दिया। अभी क्यों बोला? इसका उत्तर हम पढ़ते हैं मत्ती 28:18।
यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
सारी ताकत किसको दे दी गई है? ये कब मिल रही है? जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे। ये कब मिल रही है? जब
जी उठे,
ठीक है, मसीह के एंड में, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, परमेश्वर ने सारी ताकत सारा अधिकार क्या कर दिया उसके हाथ में,
सब ऑलमाइटी गॉड चलाने के लायक बना।
तो तीसरे जन्म के बाद जब परमेश्वर ने अपने जैसा स्वभाव अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, पहले मर सकते थे लेकिन अब क्या हो गए, परमेश्वर जैसे बन गए हैं, अमर जैसा परमेश्वर
सब उनको बोला ऑलमाइटी गॉड।
यस, तो इसलिए प्रकाशित वाक्य में अब वो बोलते हैं, मैं भी क्या बन गया हूँ, परमेश्वर ने वो मुझे दे दी है, ठीक है, वो सर्वशक्तिमान का रूप, वो चीज वो मुझे दे दी है, अथॉरिटी, अधिकार, पावर, सब कुछ क्या कर दिया परमेश्वर ने, किसको दे दिया, बेटे को दे दिया। लेकिन यहाँ पे भी बेटा कभी नहीं चाहेगा कि चलो मैं बाप को साइड लाइन कर दूं,
फिर भी बोलते थे वो
बड़ा रहेगा, हमेशा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह को बराबरी दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी पिता साइड लग जाओ तुम, ऐसा कभी बेटा नहीं चाहेगा, ठीक है। तो उसके बाद बोला उसको यशाया 9:6 में, अनंत काल का पिता। अनंत काल के पिता का मतलब आप समझ चुके हो, आपने देख लिया है कि जो जीवन आता है, जीवन वो किससे आता है, बाप से।
बाप से।
अब ये सारा संसार जो है, पहला जीवन हम सबको किससे मिला, आदम से, लेकिन मृत्यु वाला। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सबको जी उठाएंगे तो बाप कौन हो जाएगा, सदा का बाप हो जाएगा ना, क्योंकि जीवन किसने दिया, और कलीसिया का नाम क्या बन जाएगी, माँ। प्रभु यीशु मसीह बाप और कलीसिया माँ, सही ना, हाँ, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह की पत्नी। तो इसलिए उसको बोला है अनंत काल का पिता, और उसमें ये नहीं दर्शाने की कोशिश की है कि प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है, ठीक है। यूहन्ना 11:26 बात पढ़ लो, अगर ऐसा होता तो पतरस को डांटते प्रभु यीशु मसीह, जब पतरस ने बोला तुम इकलौते परमेश्वर की संतान, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं कौन हूं, तो वो बोला तुम परमेश्वर की संतान, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते, अरे परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा और तुम बोल रहे हो परमेश्वर की संतान। 11:26
और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वे अनंत काल तक ना मरेगा।
देखो, तो अनंत काल का जीवन कौन देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह, और बाप भी कौन हो जाएगा, क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब, तो जब जीवन मसीह दे रहा है तो मसीह ही बाप हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये है बात, वहां पे ये दर्शाने की कोशिश नहीं की गई है कि प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, यूहन्ना 14:7-9 एक और बात जो फिलिप्पुस ने, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, तो ये भी वचन लेके लोग बोलते हैं, अरे प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो तुम, तो ये वचन पहले पढ़ लो, फिर
यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो, उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे।
तो फिलिप्पुस ने क्या रिक्वेस्ट की थी प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता को दिखा दो हमें, तो प्रभु क्या बोलते,
यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है।
तो यहाँ प्रभु यीशु से क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, तो फिलिप्पुस ने जो विनती की प्रभु यीशु मसीह के सामने, जैसे कल को कोई हमें बोले कि दिखाओ हमें परमेश्वर, जिसको पूरा करना असंभव है। असंभव क्यों है, पहला तिमोथी 6:16
वहां पर परमेश्वर के स्वभाव को दिखा दिया ना, जब जिसने मुझे देख लिया तो मतलब मेरे स्वभाव को परमेश्वर को देख लिया। पहला सुनोती
हाँ 6 का 16
और अमरता केवल उसी की है और वह अवज्ञ ज्योति में रहता है
अग्नि ज्योति में रहता है
और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है।
तो मनुष्य कभी देख नहीं सकता पिता परमेश्वर को, ये बात भली भांति प्रभु यीशु मसीह जानते थे। अगर बोलते देख ले तो भस्म हो जाओगे भस्म। पिता परमेश्वर पता क्या है, ज्योति के बाप। ये सूरज के नजदीक ही चले जाओ जल जाओगे। सूरज 1 इंच ऊपर या 1 इंच नीचे हो जाए ना तो गर्मी से पता क्या हालात हो जाएंगे। गर्मियों में देख लो क्या हालात होते हैं बुरे। जल रहा होता है जैसे आग जलती है ऐसे होता है। और सोच लो इसको बनाने वाला के नजदीक चले जाओगे तो क्या हो जाएगा। तो शारीरिक रूप में ये बात पूरी करना असंभव थी। एक और वचन पढ़ लो, यूहन्ना 5:37।
और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है, तुमने ना कभी उसके वचनों को मन में नहीं रखते क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते।
नहीं,
और पिता जिसने मुझे भेजा उसने मेरी गवाही दी है, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है।
ना शब्द सुना ना रूप देखा, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर कभी किसी इंसान से नहीं देखे जा सकते। नहीं देख सकता परमेश्वर को कोई। परमेश्वर के सिर्फ रूप को देखा जा, परमेश्वर के रूप भी नहीं प्रतिबिंब को देखा जा सकता है,
मर जाएंगे।
उसकी इमेज देखी जा सकती है। और यही प्रभु, वो इमेज कौन थी, वो है प्रभु यीशु मसीह। कुलोसिया 1:15 और इब्रानिया 1:3।
तुम इब्रानिया निकालोगे, कुलोसिया 1:15
हाँ।
इब्रानी कितने?
1:3।
वह तो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप और
अदृश्य, जिसे पर जिस परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता उसका क्या है, प्रतिरूप है, मतलब उसका इमेज है। परमेश्वर की इमेज है प्रभु यीशु मसीह।
और इब्रानिया
1:3।
वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है।
छाप समझते
हैं?
ये वो छाप है उसकी, मतलब छाप का क्या मतलब है, कॉपी छाप लगाते ना, बोलते हैं इसका छापा लगा दो इधर।
और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है।
तो प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या था, फिलिपस ने जो इच्छा की, जो विनती की, वो शारीरिक रूप में पूरी नहीं की जा सकती। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला ठीक है, मैं पिता परमेश्वर नहीं दिखा सकता, तुम पिता परमेश्वर की छाप को देख लो, पिता परमेश्वर के प्रतिरूप को देख लो, प्रतिबिंब को देख लो। प्रभु यीशु मसीह उसका इकलौता पुत्र जो शरीर में तुम्हारे सामने आया है। तो जरा सिंपल सी बात, स्टॉप, आप रोड पे जा रहे हो और पुलिस वाला आपको बोले कि आपका लाइसेंस दिखाओ, तो आप उसको फोटोकॉपी दिखा दो, ये लोग मेरे लाइसेंस की ओरिजिनल घर पे है, फोटोकॉपी है मेरे पास। तो इतना ही क्या है, काफ़ी है। तो प्रभु यीशु मसीह भी पिता परमेश्वर की क्या है, कॉपी। पिता परमेश्वर की क्या है, कॉपी। और यहाँ तक के मनुष्य को भी अपनी कॉपी पे ही बनाया है, अपने स्वरूप और अपने जैसा, सही ना, आदम के बारे में। तो प्रभु यीशु मसीह है पिता परमेश्वर की छाप। तो इसलिए उसको शारीरिक रूप में पूरा करना असंभव था। और अब मैं आपको आज की बात बताता हूँ। लोग बोलते हैं ना, हमारे कमरे में प्रभु यीशु मसीह आके बातें करता है। जरा सोचो, अभी वो ऑलमाइटी है, अभी वो क्या है, ऐसा हो सकता है? तो ये झूठ जो फ्रेब चल रहा है लोगों को पीछे लगाने के लिए, मेरे से तो बातें कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह योहन्ना 5:37 में बोलते हैं, पिता परमेश्वर जो ऑलमाइटी परमेश्वर है, उसकी ना तो कभी किसी ने आवाज सुनी और ना किसी ने देखा।
तो मूसा को जैसे समुएल को आवाज देती थी, बात करते थे समुएल,
बताता हूँ वो भी कौन था।
मूसा को भी परमेश्वर बोलता था ना,
परमेश्वर नहीं, वो तो आपको दिखा दिया था मैंने, परमेश्वर नहीं था वो, दूत था। मूसा को जिसने धाड़ी में से दर्शन दिए वो परमेश्वर थोड़ी था। और अब एक और बात सुन लो, परमेश्वर कभी, परमेश्वर जो भी करते थे अपने शब्द से करते थे, शब्द शब्द ही बोलता था।
तो और यीशु मसीह तो बोलते होंगे ना,
मैं बताऊंगा, दिखाता हूँ आपको, सब सब हम वचन में अभी पढ़ रहे हैं ना। तो पिता, तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने फिलिपस को क्या बोला, मुझे देख लो, अगर मुझे देख लिया तो किसको देख लिया, पिता को देख लिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं यीशु नाम की। यीशु नाम तो प्रभु यीशु मसीह को धरती पे मिला। क्या परमेश्वर ने ऊपर से मैसेज भेजा, भेजा गैब्रियल के हाथ में, तुम एक बच्चे को जन्म दोगी, उसका नाम क्या रखना, मत्ती 1:21 पढ़ लो, मत्ती
1:21
21
आनंद आ रहा है
पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
क्या नाम रखना, यीशु। अभी यीशु का नाम स्वर्ग में क्या था किसी को नहीं पता है, यीशु तो नाम उसको कब मिला, लेकिन स्वर्ग में नाम क्या था वो देखेंगे अभी क्या है। फिर लूका 1:31 पढ़ लो।
देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना।
तो ये है प्रभु यीशु मसीह का धरती का नाम। अभी उसका स्वर्ग में क्या नाम था, यूहन्ना 1:1 में पढ़ा ना हमने, शब्द लोगोस। लोगोस शब्द ग्रीक भाषा में जिसका मतलब है स्पीकर, स्पीकर समझते हैं ना, स्पोक्स पर्सन, जो एक राजदूत जब बोल लो या बात करने वाला, स्पोक्स पर्सन बोलता है ना, तो स्पीकर वो था, परमेश्वर का स्पीकर, परमेश्वर का शब्द, शब्द शब्द जिसके द्वारा परमेश्वर बातचीत करते थे। ठीक है, वो लेके आए परमेश्वर का शब्द और पिता परमेश्वर के बिहाफ पे की बात। अभी ये परमेश्वर का शब्द ये कौन लेके आता था, वो दूत, ये परमेश्वर का शब्द। निर्गमन 3:2 पढ़ो, दो।
और परमेश्वर के दूत ने इस कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया
परमेश्वर के
परमेश्वर के दूत ने।
ये भी देख लो साफ साफ निर्गमन में लिखा है, झाड़ी में से दर्शन देने वाला परमेश्वर नहीं था, कौन था, परमेश्वर का दूत। और दूत पर किससे बोला, मूसा से बोला, परमेश्वर के बिहाफ पे। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, मान लो मैं ब्रदर सुनो, मान लो मैं एमपी हूँ, मैं एमपी हूँ या मैं कोई एमएलए हूँ और एक मेरा स्पीकर है, मैं कुछ लिखता हूँ या मैं आपको मैसेज देता हूँ, ब्रदर आपको मेरे बिहाफ पे यहाँ पे बात, वहां जाके बात करनी है और ये बोलना है कि मैं, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, लिख के देता हूँ आपको, मैं ये कानून निकालता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा और दुनिया को ऐसा करना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको लिख के दे दिया, आप मेरे स्पीकर हो। अभी आप उधर जाके ऐसा थोड़ी बोलोगे कि मैं थोड़ी बदल दोगे, जो आपको लिखा गया है वही बोलोगे ना, सही ना। आप ये थोड़ी बोलोगे कि वो जो एमएलए हैं उन्होंने ऐसा बोला है ऐसा, आप तो जैसा लिखा हुआ वैसा ही पढ़ेंगे ना, तो आप मेरे बिहाफ पे जहां पे वहां जाके बात कर रहे हो, तो आप मैं बोलोगे मैं ये बोल रहा हूं, ऐसे ही पढ़ोगे ना। तो ऐसे ही जब परमेश्वर का दूत आके आके बात करता था परमेश्वर के बिहाफ पे, तो जो परमेश्वर बोल के भेजते थे वही आके बोलना पड़ता था, शब्दों में हेरफेर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो परमेश्वर का क्या थे, शब्द, परमेश्वर के वचन। और चार पढ़ लो, हाँ जी, इसी की चार।
जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा,
देखो
मूसा, हे मूसा।
तो ये लगता है परमेश्वर ने, अभी जो परमेश्वर के नाम से आया वो उसको परमेश्वर बोल दिया तो क्या बुरा हो गया, वो दूत जो परमेश्वर के बिहाव पे आया, एक तरह का परमेश्वर का नुमाइंदा होके परमेश्वर ही हुआ एक तरह का, इसलिए उसको बोला परमेश्वर ने जब उसको झाड़ी में से दर्शन दिया। लेकिन झाड़ी में से दर्शन देने वाला परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर का दूत था। ये प्रेरितों के काम 7:35 में पौलुस भी ये बात साफ स्पष्ट कर रहे हैं,
प्रेरितों के काम
कितना
7:35
जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया।
स्वर्गदूत, तो स्वर्गदूत जो होता था ना, जो एंजल जो दूत होता था, वो परमेश्वर का नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव। तो उत्पत्ति 22:15-16 में भी ये बात देख लो,
फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा।
देखो तो ये देखो, अभी ये सौगन दूत नहीं खा रहा है, ये सौगन कौन खा रहा है, परमेश्वर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है। तो दूत का काम क्या होता था, परमेश्वर के बिहाफ पे आके बात करना,
सेम टू सेम बोलना।
हाँ, तो इसीलिए बोलता है परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं, परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं, बोल कर रहा था दूत, लेकिन जो परमेश्वर ने बोला वो
होता है। इतनी बड़ी सृष्टि बन गई, क्या पिता परमेश्वर कभी नहीं आया संसार में पृथ्वी पर,
उनको आने की जरूरत नहीं आएगा वो, परमेश्वर क्यों आएगा धरती पर। धरती पता परमेश्वर के लिए क्या है, देख लेना अभी थोड़ी देर में। धरती परमेश्वर के लिए एक बाल्टी में बूंद है ना, जैसे वैसी है। पढ़ लेंगे अभी अभी, और जब परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे देख लेना, उसको उठने की क्या जरूरत है, नहीं बेटे को भी अगर परमेश्वर चाहे तो बैठे बैठे क्या नहीं कर सकता, ऐसे हाथ ही घुमाना है, ऐसे ही कुछ करना है, बस उलट पलट हो जाएगा सब। एक दूत हिजकिय्याह, यशाया 36 और 37 चैप्टर में पढ़ना, एक दूत परमेश्वर का 180,000 लोगों को मार गया। जब हिजकिय्याह की प्रजा को घेर लिया, इसराइल को, यहूदा को घेर लिया बाहर से, और परमेश्वर बोला मैं लड़ूंगा तेरे बिहाफ पे, और रातों रात 180,000 सिपाही जिन्होंने घेरा हुआ था सबको मार के दूर निकल गया। तो क्या परमेश्वर के, परमेश्वर को क्या करने उठने की जरूरत है भाई, बताइए परमेश्वर को यहाँ आने की, शारीरिक रूप में आने की क्या जरूरत है, आप सोचिए जरा, परमेश्वर बहुत शक्तिशाली परमेश्वर। हाँ अभी अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग का नाम था लोगोज, वर्ड। अभी वो कौन था ये अभी हमें देखना बाकी है, क्योंकि अभी तो हमने 4-5 पेज पढ़े हैं। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये स्वर्गदूत जो परमेश्वर की मौजूदगी में रहता था, वो परमेश्वर के बिहाफ पे आके बोलता था, और ये स्वर्गदूत वही दूत है जो इज़राइल को उजाड़ में से लेके जा रहा था। पढ़ लो कूच निर्गमन 23:20 और 21। 21
सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना।
उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, विरोध ना करना।
तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा।
मैं तो कर दूंगा क्षमा, वो नहीं करेगा। वो मेरी मौजूदगी का दूत है,
उसमें मेरा नाम रहता है।
उसमें मेरा नाम रहता है। ये दूत पता कौन था? ये पौलुस बताएगा अभी। वो दूत कौन था जो उनको उस उजाड़ में घुमा रहा था, आग का खंभा बन के उनके साथ साथ चल रहा था? ये दूत पता कौन था? ये पढ़ लो, पहला कुरिन्थियों 10:4। इसलिए थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहां, 10:4।
और सबने एक ही आत्मिक जग दिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था।
और वो चट्टान कौन थी? प्रभु यीशु मसीह। वो दूत जिसके बारे में बात हो रही है, जो शरीर बनने से पहले था, चट्टान बन के इसराइल के साथ घूम रहा था। परमेश्वर का कोई भी खास काम जब होता था ना, तो यही दूत आता था। यही दूत, ये कौन है? यीशु मसीह। बड़ा खास दूत था, बहुत खास दूत था। परमेश्वर को जिस भी मिशन पे किसी के पे भेजना है, वो कौन आता था? प्रभु यीशु मसीह। और आपको बता दूं, शैतान से शक्तिशाली कोई नहीं था। जब्राइल को पकड़ लिया, जब्राइल बोलता है अभी क्या करूं मैं, 21 दिन तक पकड़ लिया शैतान ने उसको, पकड़ लिया। लेकिन जब्राइल को, जब्राइल वही है जो दूत संदेशा लेके आया था मरियम के पास। लूसीफर ने इसको क्या कर लिया? पकड़ लिया 21 दिन तक। और कौन छुड़ा के लेके गया? और वो कौन था? अभी देखना है, उसका नाम असली अभी जानना है। तो ये कौन है वो दूत? इसको परमेश्वर की मौजूदगी का दूत बोला जाता है। यशाया 63:9,
उसके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया।
उनके सम्मुख यानी उनकी मौजूदगी में रहने वाला दूत, मौजूदगी में रहता था परमेश्वर की। परमेश्वर की मौजूदगी में और कोई किसी को अनुमति नहीं दी, सिर्फ कौन? सिर्फ यीशु मसीह। बाकी सब कब? जब महिमा करनी होती थी ना, स्वर्ग में महिमा करते थे। लेकिन मौजूदगी में रहने वाला दूत कौन था? जरा सोच लो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की मौजूदगी में रहते थे। और ये मौजूदगी वाला दूत और कोई नहीं बल्कि कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कौन हो सकता है? क्योंकि पहला वही है सृष्टि परमेश्वर की।
कौन जा सकता है?
ठीक है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 1:18 में पता क्या बोलते हैं? उनकी गोदी में रहते थे। प्रभु यीशु मसीह, पढ़ लो यूहन्ना 1:18।
परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है।
गोद में है, गोद में का मतलब सही बात आ रही है अभी, मौजूदगी परमेश्वर की मौजूदगी में।
उसी ने उसे प्रकट किया।
तो सबसे ज्यादा क्लोज जो परमेश्वर के, जैसे बोलते ना, सबसे क्लोज परमेश्वर के कौन है? कौन था? प्रभु यीशु मसीह। आपको थोड़ी हैरानी हुई प्रभु यीशु मसीह को दूत समझ के? क्योंकि क्रिश्चियंस को बड़ा धक्का लगता है ये जब सुन ले, मारने को।
दूत अलग ही समझते थे बंदे, हैं कि दूत अलग है ना?
नहीं, दूत अलग भी है, लेकिन ये एक स्पेशल दूत थे परमेश्वर के।
देखिए, दूत की कैटेगरी है पंजाबी में, तो हिंदी में एक ही शब्द है
जो पुराने नियम में है।
दूत, मैं बताता हूँ, दूत दूतों की भी कैटेगरी है। एक होता है सेराफिम, एक होता है चेरुबिम, एक होता है एंजल, एक होता है आर्क एंजल। तो ये प्रभु यीशु मसीह जो थे वो आर्क एंजल थे। आर्क एंजल बड़े खास होते हैं खास मिशन के लिए, और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह थे और कोई नहीं था। शैतान जो था वो चेरुबिम था, करूबी, हिंदी में करूबी चेरुबिम था। तो बताऊंगा मैं अभी अभी आगे चलते जाएंगे। तो कई जब हैरानी होती है लोगों को, अरे पुराने निजम में प्रभु यीशु मसीह को दूत बोला है, अरे वो तो परमेश्वर है, अरे तुम कहाँ क्या यार ये सब, ऐसा बहुत धक्का लगता है उनको। कई एक बार मैंने यही क्लास कहीं ले रहा था करतारपुर की तरफ, तो जब उनके लिए क्लास ली, बोलता आप में और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है। मैंने बोला क्यों हुआ, क्या हुआ ब्रदर, मुसलमान भी तो यही बोलते हैं नबी है वो, तुम लोग बोलते हैं वो दूत है, तुम लोगों में और उसमें कोई अंतर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैंने बोला डियर ब्रदर हम
बाइबल बोल रही है।
मैंने बोला आप ये समझ रहे हैं इकलौते पुत्र का मतलब क्या है और उसकी महिमा जो हम बता रहे हैं वो आपने कभी सुनी है? सुनी है ये ऐसी महिमा? तो नहीं 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 मैं इस बात को नहीं मानता, मैं बस बस आप चुप ही रहो तो बढ़िया है। चलो क्या क्या करें सर, अभी आपको इतने सबूत दे दिए हैं उसके बावजूद आपने नहीं मानना है तो फिर क्या करें हम। तो याकूब 33 का 22 और 22 से लेकर 24 तक पढ़ लो ये दूध के बारे में।
याकूब
33 का नहीं, अयूब 33 का, अयूब 33 का 22 से 24। बाईस 23 और 24।
तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वाले के वश में हो जाता है, यदि उसके लिए कोई विचवई स्वर्गदूत मिले।
विचवई स्वर्गदूत, विचोला, विचवई। और विचवई आपको पता है किसको बोला गया है? विचवई स्वर्गदूत, विचवई, यस, मनुष्य और इंसान के बीच में एक ही विचवई है। देखो देखो साफ साफ बातें प्रकट हो रही है ना। इसको पहले पूरा पढ़ लो फिर मैं आपको इसका मतलब समझा दूंगा।
स्वर्गदूत मिले जो हजार में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है उसे गड्ढे में जाने से बता ले, मुझे चुनौती का दाम मिल गया है।
तो ये चुनौती का दाम पता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, सब जानते हैं। और वो स्वर्गदूत और वो विचवई, और विचवई मनुष्य और इंसान के बीच में विचवई कौन है? पढ़ लो पहला तिमोथियस 2:5-6।
यदि अयूब का तो पुराने नियम में है ना, पहले हम यही सोचते थे, मैंने फिर यीशु मसीह आए नहीं थे ना।
सारी बाइबल प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रही है, उत्पत्ति प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रही है। जब बोलते आओ हम अपने स्वरूप और अपने, ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, पिता परमेश्वर को बोल रहा है आओ हम, क्योंकि बनाने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह।
5:2-5-6
इसीलिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। लोग समझते हैं कि पुराना निजम खाली हिस्ट्री है, इतिहास है बस।
4 और 5 पढ़ना ना,
5 और 6।
क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचपाई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, यीशु जो मनुष्य है,
तो
जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी।
तो यीशु मनुष्य है लेकिन स्वर्ग में कोई इनका और नाम था, ठीक है,
मसीहा उसकी है
2:5-6। तो एक ही विचवई है मनुष्य, और जो विचवई का मतलब जो बातचीत करवा सकता है,
जो परमेश्वर की बात दूसरे तक पहुंचाने वाला।
तो इंसान और उसके बीच में अगर कोई है तो यीशु मसीह है, उसके बिना कोई नहीं है। तो ये है कौन? मनुष्य यीशु मसीह। वो दूत भी नहीं बोला है मनुष्य, क्योंकि दूत कुछ और है, दूत का जीवन छोड़ा तो मनुष्य बना और फिर उसने वो उनके बीच में वो बातचीत करवाई, मिलाप करवाया, ठीक है। तो ये है प्रभु यीशु मसीह की बात, और उसी के रूप में मिली थी छुड़ौती। हम जानते हैं अभी ये दूत कौन था जिसके रूप में छुड़ौती मिली थी, ये प्रभु यीशु मसीह इसमें कोई शक नहीं। अब हम ढूंढना है प्रभु यीशु मसीह का असली नाम। हम तीन स्वर्गदूत जानते हैं बड़े खास, और लूसीफर,
लूसीफर
और
एक और है
लूसीफर बना शैतान, गैब्राइल था जो मरियम के पास समाचार लेके आया, और तीसरा कौन था,
माइकल
तीसरा था माइकल। उस दिन उनके घर में मैं ये तभी पूछ रहा था ना, ये किसकी फोटो है, ये तो माइकल है। ये माइकल कौन है? यहूदा 9 में पढ़ लो, यहूदा 9। हाँ जी,
परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान,
प्रधान स्वर्गदूत इंग्लिश में क्या नाम दिया, आर्कएंजल, पढ़ लो।
बट व्हेन द आर्कएंजल,
आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल
कटेंडिंग
तो ये आर्कएंजल जो है ना, आर्कएंजल माइकल, ये और कोई नहीं बल्कि कौन है, प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्ग में नाम था, जो दूत के रूप में नाम था, वो था माइकल। पहला थिसलुकिया 4:16 पढ़ लो। तिमोथियस के बाद पहला थिसलुकिया, थिसलुकियो 4:16।
क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो
प्रधान स्वर्ग दूत का आवाज सुनाई देगी, और वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना,
विश्वास पर सबसे सर्वोपरि प्रधान दूत, एक ही सबसे बड़ा,
तो ये विश्वास हो रही है, थोड़ी हैरानी हो रही है। माइकल, माइकल को, माइकल को खत्म होना पड़ा और बना क्या, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, तो उधर से स्वर्ग से जीवन कट, स्वर्ग से जीवन क्या हुआ, कट। अगर प्रभु यीशु मसीह वफादारी ना साबित करते जिस मिशन के लिए परमेश्वर ने भेजा था, तो खत्म था सब, प्रभु यीशु मसीह डेड, कोई माइकल नहीं था, क्योंकि ऊपर से खत्म, हाँ माइकल को खत्म होना पड़ा और नीचे यीशु बनना पड़ा।
अच्छा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, अगर किसी ने पूछा प्रभु यीशु मसीह का पहला नाम क्या था,
तो आप बताना मत किसी को,
नहीं तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा।
दानियल 12:1, ये रहस्य इतना बड़ा है ब्रदर, ये रहस्य इतना बड़ा है कि दुनिया के बड़े से बड़े स्कॉलर दानियल तक नहीं जानते ये बातें। जी,
दानियल
12:1,
जो उस दिन मैंने किसी से पूछा था ना कि वो सब के संतान मेरे यहूदी लोग हैं, तो विश्वास नहीं कर रहे थे,
नहीं करेंगे, वो
नहीं कर रहे,
नहीं करेंगे,
यीशु मसीह नहीं कर सकते, कैसे हो सकते,
तो यीशु मसीह थे लेकिन बाकी तो नहीं थे ना।
हाँ,
बाकी तो धर्मी नहीं, यीशु मसीह तो धर्मी था, बाकी तो पापी थे।
हाँ, दानियल 12:1 पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो।
उसी समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, ओहो ये भी चौंक कर दिया, देखा, वह उठेगा, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर।
तो ये साफ नहीं है कि तुम्हारा मसीहा, तुम इसराइल को बोल रहे हैं, तुम्हारा मसीहा कौन होगा, वो प्रधान दूत माइकल,
जाति भाई भी बोला है।
हाँ, हाँ।
बारह का एक पक्षपात करने वाला एक, क्लियर है?
देखो तो ये है वो महान स्वर्गदूत आर्क एंजल प्रधान दूत माइकल, ये और कोई नहीं, आज जैसे हम यीशु मसीह बोलते हैं ये माइकल वही है। ठीक है, दस की तेरह भी पढ़ लो इस स्वर्गदूत के बारे में।
कौन सी दस की थी? मैं
दानियल दस की तेरह,
दस की
तेरह,
तेरह फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा।
फारस का राजा घबराइल बोल रहा है मेरा 21 दिन तक सामना। अभी एक इंसान दूत को तो थोड़ी पकड़ सकता है, वो भी घबराइल को। ये फारस का राजा पता कौन है? शैतान। शैतान ने 21 दिन तक घबराइल को पकड़ लिया, और घबराइल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद छूट के चला जाए। फिर कौन आता है छुड़ाने? देख लो,
परंतु मीकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं भारत के राजाओं के पास रहा।
देख लो, तो प्रभु यीशु मसीह ही शैतान को हरा सकते हैं स्वर्गदूतों में वैसे भी। गैब्राइल भी तो इंसान क्या चीज है शैतान का सामना करने के लिए? बिना प्रभु यीशु मसीह की मदद से तो कुछ भी।
भारत के राज्य का प्रधान पता वो शैतान का नाम है।
तो 21 दिन तक घबराइल को पकड़ा और प्रभु यीशु मसीह ने आके छुड़ाया, माइकल ने आके छुड़ाया। और ये जो तस्वीर देखते हैं ना, ये
माइकल है ना,
माइकल इंग्लिश में माइकल है, माइकल। ठीक है, माइकल शब्द का भी मतलब है जो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, उसका क्या मतलब है। माइकल इल मीन क्या है और माइकल का इसका मतलब। तो ये है वो आर्कएंजल प्रभु यीशु मसीह मुख्य प्रधानों में से एक। अभी ये मुख्य प्रधान कौन है? एक वचन उत्तर पढ़ेंगे इसका, भजन संहिता 82 का 7।
भजन
संहिता 82 82 का 7।
तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे।
तो किसी प्रधान के समान गिर जाओगे, तो कलीसिया के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के जो वफादार चेले हैं, जो असली क्रिश्चियन हैं, जो वफादार ईसाई हैं, प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने वाले जो नई सृष्टि हैं, इंसानों में से इंसानों की तरह मरेंगे और प्रधानों में से एक की तरह मरेंगे। अभी तीन प्रधान हुए हैं, तीन प्रधान हुए हैं, पता कौन कौन? एक तो आदम, आदम को राजा बनाया था आदम के बाग में। उसके बाद दूसरा प्रधान है शैतान, क्योंकि लूका 4:6 में देख लो बोला है, लूका 4:6 में शैतान बोला है सारी सामर्थ मुझे दी गई है। पढ़ लो लूका 4:6।
और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह तुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ।
तो वो शैतान बोल रहा है ये सारा अधिकार, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को बोलता ना फास्टिंग के बाद, सब कुछ मेरा है, मेरी पूजा कर, मैं तुझे क्या कर दूंगा, दे दूंगा, परमेश्वर ने दिया उसको। तो ये तीन थे, एक आदम, एक शैतान और एक प्रभु यीशु मसीह। तो इसीलिए वो बोलता है कि तुम इंसानों की तरह मरोगे और प्रधानों में से किसी एक की तरह गिरोगे, और वो किसकी तरह? यीशु मसीह, यानी तुम्हें भी कुर्बानी वाली मौत मरना होगा। तो तीसरा जो प्रधान है वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसको एंड में मिलता है, मत्ती 28:18 भी पढ़ा ना, बोलता है सारा अधिकार किसे दे दिया गया है? मुझे दे दिया गया है। ठीक है, तो भजन संहिता 95:3 में पढ़ लो, 95:3।
क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है।
तो सारे देवताओं के ऊपर राजा है, तो सारे देवताओं में आदम आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, शैतान आ जाता है, सबके ऊपर राजा कौन है? पिता परमेश्वर। ठीक है, तो ये है प्रभु यीशु मसीह के बारे में सत्य। और एक और नाम देख लो प्रभु यीशु मसीह का, प्रकाशित वाक्य 22:16 में, प्रकाशित
22:16 मुझे यीशु ने अपने स्वदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और बंस और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ।
भोर का चमकता हुआ तारा, ये चिन्हात्मक भाषा है, याद रखना। सुबह का तारा, सुबह, सुबह का मतलब समझते हैं, जब शुरुआत होती है, तो सुबह का मतलब है जब परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत की, वो है सुबह, उसका तारा, तारे की महिमा होती है। तारा बहुत अच्छा लगता है ना, वाओ क्या चमक रहा है। तो परमेश्वर की मैं बड़ी महिमा वाली सृष्टि हूँ जो शुरुआत हूँ, इसीलिए बोलता है मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा। ठीक है, शुरुआत की सृष्टि। ठीक है, तारे का मतलब प्रभु यीशु मसीह तारा नहीं है, मतलब चिनात्मिक रूप में। ठीक है,
जैसे तारा चमकता है।
हाँ, तो शैतान को भी सुबह का तारा बोला है, पढ़ लो यशाया 14:12। लूसीफर को बनाने वाला कौन था?
भोर के चमकने वाले तारे।
देखो लूसीफर को भी क्या बोला है,
भोर के चमकने वाले तारे।
हाँ,
तू कैसे आकाश से
गिर पड़ा,
तू जो जाति जाति को हरा देता था।
देखो, तो ये लूसीफर जो है ये भी बड़ी खास सृष्टि है परमेश्वर की, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी, बड़ी खास सृष्टि थी जो शैतान बन गया, इसको भी भोर का तारा बोला है, लेकिन इंग्लिश में फर्क है, इसको मॉर्निंग स्टार बोला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार। ठीक है, उसको चमकता हुआ, सुबह का चमकता हुआ तारा, इसको सुबह का तारा। ओ लूसीफर सन ऑफ मॉर्निंग,
हाउ यू आर फॉलन फ्रॉम हेवन,
हाँ,
ओ डे स्टार ऑन सन ऑफ डाउन।
ये सही अनुवाद नहीं है सिस्टर, उसमें पढ़ लो, उसमें पढ़ लो, बाद में पढ़ लेना, लेकिन ओ लूसीफर सन ऑफ मॉर्निंग लिखा है। ठीक है, तो ये है लूसीफर जो शैतान जो बना बाद में, ये भी शुरू मॉर्निंग तारा। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया, यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह ने सबसे पहले, यीशु मसीह ने जब अपना काम शुरू किया तो सबसे पहले पता है किसको बनाया, लूसीफर। सबसे पहला जो सृष्टि बनाई प्रभु यीशु मसीह ने वो थी लूसीफर। हाँ, यस, ये अयूब 26:13 में पढ़ ले,
26:13।
नहीं, वेट, बहुत बहुत देर की बात है।
उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है, वह अपने हाथ से वेग भगाने वाले नाग को मार देता है। नहीं, 26:13 है ना?
हाँ
हाँ भाई, अयूब,
अयूब, उसके हाथ ने वो सांप बनाया। पढ़ो,
इसमें लिखा है 26:13, उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है, वह अपनी हाथ से वेग भगाने वाले नाग को मार देता है।
गलत है, बहुत गलत है ये तो। पढ़ो आप सिस्टर, अयूब 26:13। आप भजन संगीता निकाल के बैठे हो मुझे लगता है।
नहीं, अयूब का,
अयूब, हाँ हाँ ठीक है।
उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है, वह अपने हाथों से वेग भागने वाले नाग को मार देता है।
इंग्लिश में पढ़ो अभी इधर,
बाय हिज वाइल द हेवन वेयर मेड फेयर हिज हैंड पियर्स्ड द फीलिंग सर्पेंट सर्पेंट।
ये वाली बाइबल में पढ़ो,
सरपंच की खबर की है
जोब
ना
26-13। तो बहुत ये तो घोची वाले काम किया हुआ है ये तो हिंदी में
दोनों गलती है इंग्लिश में भी हिंदी में गलती है
जोब 26-13
जोब हमें 26-13 ये दिया और 26-13 है ना देखना why his spirit
इसमें spirit लिखा
है हाँ क्या लिखा
why his spirit Adomic the heaven heaven his hand the set the feeling serpent
पर
नहीं थोड़ा तो दो तीन मिनट को दिन करो आपने स्पीड लिखा ना बाय स्पीड
नहीं मैं आपको पढ़ाता हूँ 26-13
तो ये तो
ये पढ़ो केजीबी ये लो सिस्टर ये पढ़िए जरा जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग कर लीजिए 26-13
पढ़ो
पढ़ो
ये
He had.
His hand had formed the crooked serpent.
Formed का मतलब होता है बनाना लेकिन आप जो हिंदी बाइबल में दे रहे हैं मार मारना लिखा हुआ है मारता है मारता नहीं है formed formed का मतलब होता है बनाना form देना shape देना ठीक है तो his hand ये हिज हैंड परमेश्वर का हाथ पता कौन है परमेश्वर का हाथ यस यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह का हाथ किसको बनाता है वो सांप को वो सांप कौन है शैतान तो इसीलिए
गलत दिया होगा
वही तभी तो लोग ब्रदर सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते ना यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे तो गड़बड़ी है कुछ कुछ पहुंचना नहीं चाहते और कुछ पहुंच मतलब इच्छा नहीं रखते और कईयों को ये रास्ता ही नहीं मिलता है ठीक है तो इसलिए सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि का काम शुरुआत किया परमेश्वर शुरुआत के परमेश्वर की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत लूसीफर इसीलिए लूसीफर से पावरफुल नहीं था कोई भी दूत इसीलिए लूसीफर को अगर वो संभालना है तो किसको आना है जिसने उसको बनाया है तो माइकल को आना पड़ा छुड़ाने के लिए ठीक है जिब्राइल भी लूसीफर के बाद आ रहा है और अयूब 38 का 7 पढ़ लो ये दोनों साथ साथ गाते थे
38 जबकि भोर के तारे एक
संग भोर का तारा नहीं बोला भोर के
तारे
दो कौन कौन यीशु मसीह यानी माइकल और लूसीफर दोनों साथ साथ क्या करते थे
भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे
तो ये दोनों साथ कर मिलकर परमेश्वर की जय जयकार किया करते थे तो इसलिए हम देखते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर के इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई है सृष्टि सीधे तौर पे मतलब जिसको परमेश्वर ने बनाया है एक को ही बनाया है और वो है प्रभु यीशु मसीह उसके बाद परमेश्वर ने किसी को नहीं बनाया और ना ही बनाएगा बाकी जो कुछ भी करेगा वो किसके द्वारा अपने हाथ के द्वारा और वो हाथ कौन है उसका उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह तो इससे पहले कि हम आज की अपनी पढ़ाई को खत्म करें कुछ वचन ऐसे हैं जिनमें लगता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद पिता परमेश्वर है योहन्ना ए पहला योहन्ना 5:20 पढ़ लो
हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ दी है कि हम उसे सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हुए सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है।
सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तो इस वचन का मतलब क्या है? लोग समझते हैं कि ये वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है, लेकिन अगर कोई ध्यान से पढ़े तो उससे ये पता चलता है, ध्यान से पढ़ो तो हमें, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये समझ दी कि हम वो परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है उसके बारे में समझें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जरिए से ही ये समझ आती है कि सच्चा परमेश्वर कोई है, दैट हम उस सच्चे परमेश्वर को जाने। अभी ध्यान से पढ़ लो, ये बात पढ़ लो
दोबारा।
हाँ,
हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने।
उस सच्चे को उसने हमें समझ दी कि उस सच्चे परमेश्वर को पहचाने। हाँ हाँ,
और हम उसमें जो सत्य है,
हम जो उसमें सत्य है
अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं।
तो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह में रहते हैं
सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है।
सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है कि सब सच्चे परमेश्वर को जाने। यही प्रार्थना भी की प्रभु यीशु मसीह ने, मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या समझ दी? यूहन्ना 1:18 में पढ़ लो। पढ़ो यूहन्ना 1:18।
परमेश्वर को किसी ने कभी ना देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है।
तो प्रभु यीशु मसीह ये समझ हमें देते हैं कि सच्चा परमेश्वर कैसा है। उसको देखा नहीं जा सकता है, उसके रूप को देखा जा सकता है, वो जो मुझ में है। और प्रभु यीशु मसीह से ही देख लो, अनंत जीवन इसी चीज में है। किसमें? यूहन्ना 17:3।
और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने।
तुझ एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एक ही है परमेश्वर। अनंत जीवन इसी में है कि हम उस सच्चे परमेश्वर को क्या करें?
जाने।
यही प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी। उसने बोला एक ही परमेश्वर है। प्रेरित भी अच्छी तरीके से जानते थे ये बात, इसीलिए वो बोलते थे प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर। वो जानते थे पिता कौन है और पुत्र कौन है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें बाइबल से मिलती है सच्चाई एक, कि एक ही परमेश्वर है और वो है पिता, और वो है पिता। ना तो कोई त्रिदेव है और ना ही प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर है और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। ये दोनों अलग अलग हैं। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को बहुत महिमा दी है और प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं अपने पिता के बारे में कि पिता की महिमा क्या है, और पिता पिता है, पिता उनसे बड़ा है। तो इसी के साथ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी त्रिदेव की पढ़ाई का दूसरा भाग में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सीखते हैं, और इसी के साथ ये ट्रिनिटी का दूसरे भाग की पढ़ाई खत्म होती है। परमेश्वर ही हम सबको आशीष करे। आमीन।